नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। गौतम अडानी एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी धारावी का कायाकल्प करने जा रहे हैं। अडानी की कंपनी को धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का ठेका मिला है। बहुत कम लोग जानते हैं कि अडानी का बचपन भी चौल में बीता है। स्कूल ड्रॉप आउट गौतम अडानी का परिवार कभी अहमदाबाद के पोल इलाके की एक चौल में रहा करता था। तब परिवार में आर्थिक तंगी भी थी। बाद में जब 70 के दशक में अडानी हीरे का कारोबार करने के इरादे से मुंबई आए, तब धारावी ने ही उन्हें सहारा दिया था। आपको बता दें कि गौतम अडानी की कंपनी ने धारावी प्रोजेक्ट के लिए 5,069 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। अडानी की बोली दूसरे नंबर पर रहने वाली डीएलएफ की बिड से दोगुनी थी। डीएलएफ की बोली 2,025 करोड़ की थी। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट दुनिया के सबसे बड़े शहरी पुनर्वास और पुनरुद्धार प्रोजेक्ट में से एक है। इसमें लगभग 10 लाख लोगों का पुनर्वास किया जाना है। 10 लाख तो दुनिया के कई महत्वपूर्ण देशों की आबादी तक नहीं होती। दूसरा ये कि इस दौरान न सिर्फ आवासीय इकाइयों बल्कि विभिन्न आकार और पैमानों के अलग अलग व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का पुनर्वास भी होगा। तीसरा, प्रोजेक्ट का लक्ष्य व्यापक और समग्र विकास का है, क्योंकि इसमें पात्र और अपात्र दोनों तरह के निवासियों के आवास और पुनर्वास की ज़रूरतें पूरी की जाएंगी। आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी इंफोसिस के वित्त वर्ष 2023-24 के वृद्धि पूर्वानुमान में कमी करने के बाद प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में गिर गए। बाजार की ब्लू चिप कंपनियों रिलायंस इंडस्ट्रीज और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के शेयरों में गिरावट से भी कारोबारियों की धारणा प्रभावित हुई। इस दौरान 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 749.75 अंक टूटकर 66,822.15 पर आ गया। एनएसई निफ्टी 203.15 अंक गिरकर 19,776 पर कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स के शेयरों में सबसे अधिक 8% की गिरावट इंफोसिस में हुई। इसके अलावा एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टीसीएस, विप्रो, हिंदुस्तान यूनिलीवर, रिलायंस इंडस्ट्रीज और टेक महिंद्रा भी लाल निशान में थे। दूसरी ओर लार्सन एंड टूब्रो, एसबीआई, नेस्ले, पावरग्रेड और टाटा मोटर्स में बढ़त हुई। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.78% चढ़कर 80.26 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के भाव पर पहुँच गया। घरेलू शेयर बाजारों में नकारात्मक रुख और कच्चे तेल की कीमतों में मजबूती के बीच शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 12 पैसे गिरकर 82.05 पर आ गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 82.03 पर खुला और फिर 82.05 पर पहुंच गया, जो पिछले बंद भाव के मुकाबले 12 पैसे की गिरावट को दर्शाता है। रुपया बृहस्पतिवार को डॉलर के मुकाबले 81.93 पर बंद हुआ था। इस बीच 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.09% गिरकर 100.78 पर आ गया। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड वायदा 0.78% बढ़कर 80.26 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर पहुँच गया। शेयर बाजार के अस्थायी आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बृहस्पतिवार को शुद्ध रूप से 3,370.90 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। एयर इंडिया और सीएफएम इंटरनेशनल ने 400 कम चौड़े विमानों के नए बेड़े के लिए लीप इंजन के ऑर्डर को अंतिम रूप दे दिया है। ये इंजन 210 एयरबस A320 और A321 नियो और 190 बोइंग 737 मैक्स विमानों को शक्ति प्रदान करेंगे। सीएफएम ने बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा, दोनों कंपनियों ने एक बहुवर्षीय सेवा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए, जिसमें एयरलाइन के लीप इंजनों का पूरा बेड़ा शामिल होगा। इस ठेके के बारे में सबसे पहले फरवरी में घोषणा की गई थी। एयर इंडिया 2002 से सीएफएम की ग्राहक रही है, जब उसने सीएफएम 56-5B इंजन से चलने वाले A320 नियो विमान का परिचालन शुरू किया था। एयर इंडिया के सीईओ और प्रबंध निदेशक कैंपबेल विल्सन ने कहा, हमें सीएफएम के साथ एक बड़े सौदे की खुशी है, जो भविष्य में हमारी वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। डिजिटल संचार आयोग ने अंतरिक्ष संचार को जमीन आधारित नेटवर्क से जोड़ने वाले सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे के लिए अलग लाइसेंस जारी करने के प्रस्ताव को बृहस्पतिवार को मंजूरी दे दी। एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि SESG के लाइसेंस धारक अंतिम ग्राहकों को सीधे तौर पर कोई सेवा नहीं देंगे। इसका हिस्सा बनने के लिए उन पर 10 लाख रुपए का एक मुश्त प्रवेश शुल्क लगाया जाएगा। सूत्र ने कहा, डिजिटल संचार आयोग ने सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे के बारे में दूरसंचार नियामक ट्राई की सिफारिश को स्वीकृति दे दी है। SESG लाइसेंस धारक को उपग्रह सेवा प्रदाताओं की ज़रूरतें पूरी करने के लिए कई SESG स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि उन्हें हर एक SESG स्थापित करने से पहले दूरसंचार विभाग से अलग से अनुमति लेनी होगी। SESG लाइसेंस प्रभावी होने की तारीख से 20 वर्षों के लिए वैध होगा और उसका 10 वर्षों के लिए नवीनीकरण किया जा सकता है। दूरसंचार विभाग ही दूरसंचार से संबंधित सेवाओं के लिए लाइसेंस जारी करता है। वहीं प्रसारण सेवाओं का लाइसेंस सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से जारी किया जाता है। पशुपालन और डेयरी विभाग ने बृहस्पतिवार को कहा कि वो पशुधन क्षेत्र में लगे MSME के लिए धन के प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए ऋण गारंटी योजना लागू कर रहा है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला विभाग पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास निधि के तहत क्रेडिट गारंटी योजना लागू कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य ऋण वितरण प्रणाली को मजबूत करना और पशुधन क्षेत्र में लगे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बिना किसी गारंटी के सुचारू प्रवाह की सुविधा प्रदान करना है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।